परम आदरणीय, आदर्शनीय, मार्गदर्शनीय मास्टर मुरलीधर राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी हम सभी के सामने अपने अनुभव के रत्नों से भरपूर करने के लिए उपस्थित हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास छोटे से गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। आपका ईश्वरीय जीवन 1960 से आपके ही लौकिक घर से शुरू हुई तथा बचपन से ही योगी जीवन जीने का आपने संकल्प लिया। आप 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू इस वहां समर्पित होकर विभिन्न डिपार्टमेंट में अथक सेवाएं दे रहे हैं। आप 1972 से दीदी मनमोहिनी जी के साथ हिंदी मुरलीज कंपोज करने तथा उसको सार रूप में वरदान स्लोगन जो हम सभी पढ़ते हैं रोज, इन सब रूपों में मुरली को आप कन्वर्ट करके विशेष पॉइंट्स के द्वारा हम सभी ब्राह्मण परिवार का विशेष सेवाएं दे रहे हैं। हम सभी को मुरली का विशेष पॉइंट्स बहुत सरल रूप से हम सभी के सामने उपस्थित आप रख रहे हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग का आप हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर है। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ टाइप करके हम सभी को रात में ही अव्यक्त बाप दादा के मुरली के बाद में ही टाइप मुरली मिलता था, उसके पीछे भाई जी का जो सेवा था पहले टाइप करके विश्व कोने कोने तक तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का आपका विशेष योगदान है। आप मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट भी आप संभालते हैं। मुख्यालय से प्रति मास स्व उन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्म प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है, वह आप प्रकाशित करते रहते हैं। इन सभी सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी आप देखते हैं। विश्व के अनेक देशों में आपने सेवाएं की हैं। आज अभी हम सभी के सामने आलस्य से मुक्त उल्लास युक्त जीवन कैसे जीना है उसके बारे में हमको प्रकाश डालेंगे आदरणीय भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी संगम युग पर मीठे बाबा से ही अनेकानेक खजाने प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, गुण और शक्तियों का खजाना भी दिया है, लेकिन इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी कई बार स्वयं को आत्मा खाली खाली महसूस करती है, हिम्मतहीन बन जाती है, उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। उसका मूल कारण आलस्य और अलबेलापन है। ये ब्राह्मणों का महाशत्रु है। बाबा कई बार कहते हैं काम क्रोध महाशत्रु है, लेकिन पांचों विकारों की जड़ में है आलस्य सुस्ती, क्योंकि बाबा ने माया जीत बनाने के लिए भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की विधियां हम सबको नए नए तरीके से सुनाई हैं, सिखाई हैं। अगर कोई बाबा का बच्चा श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करता है तो सहज मार्ग कभी भी उसको सहन करने के रूप में नहीं अनुभव होता, वो मेहनत और मुश्किल का अनुभव नहीं करता। लेकिन अगर जरा भी कहीं आलस्य ने घेराव कर लिया, अलबेला पना गया, तो उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। कई बाबा के बच्चों के आगे कोई भी विघ्न नहीं है लेकिन लगन भी नहीं है। एक रेगुलर नियम पूर्वक बनी हुई दिनचर्या को फॉलो करते हैं लेकिन जो उसमें नवीनता होनी चाहिए, जो उल्लास होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है जैसे चल तो रहे हैं लेकिन मजबूरी से चल रहे हैं। ब्राह्मण जीवन एक नए प्रकार का बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया, इतनी ऊंची श्रेष्ठ पालना दी, बाप रूप से इतना श्रेष्ठ वर्षा दिया, शिक्षक रूप से पढ़ाया सिखाया योग्य बनाया और सतगुरु के रूप से वरदानों से भरपूर किया। लेकिन चेहरे पर पुरुषार्थ में अगर वो दिखाई नहीं देता, झलकता नहीं है, संगम की इतनी प्राप्तियां होते हुए भी कोई को नशा खुशी उमंग उत्साह नहीं है तो जरूर कहीं न कहीं माया का वार होता है। और आलस्य तो ऐसी माया है, सुस्ती के रूप में आती है कि नियम पूर्वक कई बाबा के बच्चे अमृत वेले उठ भी जाते हैं लेकिन बाबा बहुत रमणीक दृश्य देखते हैं वतन से, और कभी कभी मुरली के अंदर उसका वर्णन भी करते हैं कि जैसे खटयोगियों का म्यूजियम बना हुआ है, जयपुर में खटयोगियों का म्यूजियम बना है, छोटे छोटे मॉडल्स में कोई कैसे आसन कर रहा है, कोई कैसे, कोई उल्टा लटका है, कोई टेढ़ा है, कोई कैसे खड़ा है। ऐसे ही जब अमृत वेले का दृश्य अगर आप देखें साक्षी होकर के संगठन के बीच में आकर के, तो लोग कोई ऊपर की तरफ आसमान की तरफ निद्रा का अनुभव कर रहे हैं, कोई गर्दन नीचे करके बैठे हैं, झूम रहे हैं। संगम की जो प्राप्तियां हैं, अमृत वेले का जो महत्व है, बाबा से अमृतत्व का अमर भाव का वरदान लेने का जो समय है, आप सब साक्षी होकर के अपने आप को चेक करना, सचमुच उसी अनुसार वो अमृत वेले का समय हमारा बीतता है या एक आलस्य का घेराव होता है, सुस्ती का घेराव होता है। क्योंकि वायुमंडल में तो चारों ओर लोग सोए हुए हैं, निद्रा की गोदी में हैं, और बाबा के बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा की मिले हुए अपॉइंटमेंट के समय को सफल करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों के लिए 4 से 5 बजे का समय निश्चित किया है और उस निश्चित समय में किस प्रकार की हमारी स्थिति रहती है, क्या सचमुच वो योग के गहरे अनुभव होते हैं, नए नए ढंग से हम योग करते हैं, प्रयोग करते हैं, या एक नियम का पालन करते हैं, और वो नियम का पालन करते करते एकदम नींद का घेराव, सुस्ती आती है, थकावट का अनुभव होता है, जो प्राप्तियां होनी चाहिए उससे आत्मा वंचित हो जाती है। कई बाबा के बच्चे मुरली क्लास में भी समय पर आते हैं, नोट्स भी लेने की आदत होती है, डायरी भी होती है, पेन भी होता है, लेकिन चलते चलते लिखने की बजाय लंबी लाइन लग जाती है। कारण है आलस, सुस्ती। ये सुस्ती कोई भी प्रकार से अगर ब्राह्मणों ने नहीं खत्म कर पाई, उमंग उत्साह में नहीं रहे, तो कमाई से हमें वंचित कर देती है। इसलिए आप सब बाबा के बच्चे, 7-8 बातें मैं आपके आगे रखता हूं। बाबा कहते हैं, जब बच्चों के ऊपर जवाबदारी आती है, जिम्मेवारियां होती हैं, तो उन्हें सुस्ती नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ी रचना है, बहुत बड़ा कार्य बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को दिया है। विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए बाबा ने अपने बच्चों को सहयोगी बनाया, उसमें भी स्वयं परिवर्तन के साथ साथ इस प्रकृति का परिवर्तन, तमोगुणी वायुमंडल का परिवर्तन, और उसमें भी अनेकानेक भटकती हुई आत्माओं की मुक्ति का कार्य, बहुत बड़ा कार्य बाबा ने अपने बच्चों पर रखा है। हम सबको अपने कार्य की स्मृतियां अगर रहती हैं, तो जिम्मेवारी आलस्य को भगा देती है। इसलिए सभी, कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, नया नहीं समझना, लेकिन बाबा के बच्चे बने, बाबा ने एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी उम्मीदें हम बच्चों में रखी हैं। हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारा अच्छा श्रेष्ठ चिंतन, हमारी श्रेष्ठ वृत्तियां इस वायुमंडल को परिवर्तन कर रही हैं। इसलिए जैसे हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने रात को जाग जाग करके इतनी बड़ी उम्र में, कई बार बाबा की साकार मुरलियों में सुनते हैं कि बाबा रात भर जग करके बच्चों को सकाश देते हैं, बच्चों को सर्च लाइट देते हैं, बच्चों को करंट देते हैं, कोई बीमार है, कोई बांधिलियां हैं, बांधेले हैं, कोई बहुत दुख अशांति के कारण तनावग्रस्त हैं, कई तो बाबा के बच्चे बाबा को मिले भी नहीं हैं, देखा भी नहीं है, लेकिन ज्ञान में आ गए, बहुत प्यार से बाबा 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 दिल से कहते हैं, तो वहां याद करते अपने अपने स्थान पर, और यहां बाबा की नींद फिट जाती है। बाबा बहुत बैठ करके एकदम तपस्वी स्वरूप से उन बच्चों को इमर्ज करते, उनको सर्च लाइट देते, कहां वो नींद चली जाती इतनी बड़ी आयु में। कई बार बाबा बिस्तर पर लेट करके, टांग पर टांग चढ़ा करके, साकार रूप में ऐसे विष्णु की तरह लेटे हुए हैं, विचार सागर मंथन कर रहे हैं और बच्चों को सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, कहां नींद आती, भाग जाती अपने आप। लेकिन ये महसूसता रहती है कि हम कितनी बड़ी जवाबदार आत्माएं हैं, कलयुग की दुनिया के अंदर कितने दुख, कितनी प्रकार की अशांति बढ़ रही है, चारों तरफ जब इतना हाहाकार का वातावरण बनता जा रहा है, ऐसे समय पर बाबा ने अपने सहयोगी भुजाओं को तैयार किया है। आप सभी कौन हैं? ऐसी सहयोगी भुजाएं हैं ना? समझते हैं कि बाबा ने विश्व परिवर्तन का महान कार्य खुद तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को हमें निमित्त बनाया है। बाबा कहते, आप बच्चे मेरे राइट हैंड भुजाएं हो, आपको दुखियों पर रहम करना है, रहम करो माँ बाप हमारे, गीत गाते हैं ना। अब वो समय आ गया और ऐसे समय पर आलस्य और अलबेलापन कहाँ से आएगा, क्योंकि अलबेलापन ऐसी चीज है जो एक सुस्ती का ही दूसरा रूप है। भाषा क्या होती है, कर लेंगे, हो जाएगा, कौन अभी बन गया है। बाबा कई बार कह देते हैं कि माला तो 8 की ही बननी है, बाकी तो सबको नंबर वार सजाएं खानी है। बाबा की बातें बाबा को ही सुनाना शुरू कर देते, ये अलबेलापन है। जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो कभी भी कोई भी कार्य कोई भी सेवा कल के ऊपर नहीं छोड़ते, जो करना है वो अब करना है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये सबसे बड़ा आलस्य है। हम सब इस समय वर्तमान समय कोई भी कार्य को पेंडिंग न रखें। मुझे अपनी डिपार्टमेंट में ये बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आप सब जानते हो कि पूरे विश्व का ब्राह्मण परिवार की पढ़ाई का सोर्स मुरली है, और वो मुरली डिपार्टमेंट की प्रथम सेवा, पहली सेवा तैयार करने की, भेजने की, उसमें सेटिंग करने की, वरदान स्लोगन अभ्यक्ति सारे बहुत सारी बातें जो भी देखते हो पढ़ते हो उसके लिए बाबा ने निमित्त रखा। और उसमें भी एक साथ पूरा विश्व उसी दिन उसी रूप में बाबा के महावाक्य सुने। जो मधुबन में मुरली सवेरे सुनते हैं वो एक गांव में बैठा हुआ, एक विश्व के कोने में बैठा हुआ, चिल्ली में बैठा हुआ भाई भी बहन भी वही मुरली सुने पढ़े। कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है, कितने दिन पहले से सब तैयारी होती है, 3 मास पहले सारा ही होमवर्क तैयार हो जाता है, तो वो सब तैयार करके इंटरनेट पर रखना भेजना बाबा ने उस सेवा के निमित्त बनाया है। और मैं कहूँ मैं तो अभी सेवा करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होगा, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, तो हो जाएगा, संगठन एक हो सकता है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है। तो आप सभी बाबा के बच्चों को अपनी जवाबदारियां स्मृति में रखनी है, जिस कार्य के लिए जिस सेवा के लिए निमित्त बनाया है बाबा ने, केवल ये नहीं समझना कि मैं अपने आप को बदलने के लिए निमित्त हूं। ठीक है, बाबा का स्लोगन बहुत अच्छा है, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन एक एक बच्चे को पूरे वृक्ष की जड़ों में बिठाया है और सबको एक बहुत ऊंचा टाइटल दिया है कि आप की तने में बैठी हुई पूर्वज आत्माएं हो। पूर्वजों को अपनी वंशावली का बहुत ख्याल रहता है, पूरा वृक्ष आपकी वंशावली है, चाहे वो किसी भी धर्म में किसी भी शाखा में चला गया, कितने मठ पंथ बन गए, कितनी टालटालियां निकल गई, लेकिन सबको शक्ति और सकास मिलती कहां से है, केवल बीज से नहीं मिलती, लेकिन बीज के साथ साथ जो जड़ें हैं, तने में बैठे हुए तपस्वी आत्माएं हैं, उसी से उनके ही शुद्ध पवित्र संकल्पों से ये पूरे सृष्टि ग्लोब को पूरे वृक्ष को शक्ति और सकास मिलती है। इसलिए इस जवाबदारी को अगर हम महसूस करेंगे तो कभी भी आलस्य अलबेलापन सुस्ती नहीं आएगी, सदा उल्लास बना रहेगा कि भगवान ने हमें ये बहुत बड़ा महान कार्य दिया है। हमें केवल स्वयं को पावन नहीं बनाना है लेकिन पूरे विश्व को पूरी प्रकृति को जो तमोगुणी बन गई है, दुखदाई बन गई है, उसको परिवर्तन करना है, उसको हमें मदद करनी है, सहयोग देना है। करते हैं आप सभी ऐसे नमाज शाम के समय कम से कम आधा घंटा। हमारी दादियों ने कभी भी नमाज शाम के समय का जो योग है उसको मिस नहीं किया। 7 से 7:30 सभी दादियां, मैंने देखा गुलजार दादी को अंत तक शाम का योग मिस नहीं किया, जानकी दादी ने शाम का योग मिस नहीं किया। कितने भी बड़े काम हों, कितनी भी सेवाएं हों, कितना भी वो व्यस्त हों, लेकिन नमाज शाम के समय सब समेटो, बाबा की याद में बैठ जाओ। प्रकृति को पावन बनाना है, आत्माओं को शक्ति और सकास देनी है। हम कहीं देने नहीं जाते, लेकिन अगर हम पावरफुल स्थिति में बैठते हैं तो अपने आप उसके प्रकंपन, उसकी शक्तियां चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं। तो इसलिए आप सभी इस बात को समझना कि ये सुस्ती, ये आलस्य जो है, हमें कहीं इस भाग्य से वंचित न कर दे, इन सेवाओं से कहीं वंचित न कर दे, इस पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जब चारों तरफ माया का साम्राज्य है, चलते चलते थोड़ी भी कोई गफलत हुई तो माया तुरंत अटैक करती है, बदला लेती है। क्योंकि जिसके साथ हम इतना समय रहे हैं, 63 जन्मों का जिसके साथ स्नेह रखा है, जिसके हो करके रहे हैं, संगम युग पर हम सब उसको जीतते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन विजयी आत्माएं अगर कहीं पर भी थोड़ा भी अलबेली हो गई, सुस्त हो गई, आलस्य आ गया, तो पहला वार माया करती है हमारे संकल्प शक्ति पर, बुद्धि की शक्ति पर। और जब मन और बुद्धि पर माया का अटैक आता है तो बुद्धि जो ठीक सोचना और निर्णय करना चाहिए उसकी बजाय वो नेगेटिव देखना शुरू कर देती है, व्यर्थ देखना शुरू कर देती है, दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं और अपने को निर्दोष समझती है। ये आलस्य का बहुत सूक्ष्म रूप है। अगर इस गहराई को किसी ब्राह्मण आत्मा ने समझ लिया, ये माया का हमारी बुद्धि पर वार हो रहा है, जो हमें अपने ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं नहीं दिखाई देती लेकिन उनकी कमी और कमजोरियां दिखाई देती हैं, उस पर हमारा ध्यान जाता है। हम समझते हैं इसके कारण ऐसा हो रहा है, इस भाई के कारण ऐसा हो रहा है, इस बहन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका कारण हम हैं। हमारे कमजोर संकल्पों के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए अपने संकल्पों पर बहुत बहुत पहरा देने की जरूरत है। ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं, चिंतन चल रहा है। एक रमणीक बात सुनाता हूँ। एक दिन मैं पांडव भवन में, छोटा था जब आया था मधुबन में, तो ये आंगन के अंदर पांडव भवन में जो थल्ले बने हैं वहाँ एक जगह मैं ऐसे चुपचाप बैठा था, और हमारे जगदीश भाई जी बहुत एक्टिव थे उस समय, बहुत चुस्त और फास्ट सैर कर रहे थे, इधर से उधर आंगन में ही कर रहे थे। तो जब मेरे को देखा तो मेरे पास खड़े हो गया करके और बोलते हैं, राजू क्या सोच रहा है? तो मेरे मुख से निकला, भाई साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अचानक मैंने अचानक पूछा और अचानक मुंह से निकला कुछ नहीं। बस उन्होंने मेरा उस पर क्लास करा दिया। करीब 15-20 मिनट मेरे को उसी पर समझाते रहे कि ऐसा कोई समय नहीं होता। अगर आत्मा इस शरीर में है, ब्रेन उसका ठीक है, तो बिना सोचे रहती नहीं है। अगर कह रहे हो कुछ नहीं सोच रहा है तो क्या ये ब्रेन डेड हो गया क्या? नहीं, बिना संकल्प के नहीं रहती। सारा कल्प ही संकल्प चले हैं, उस संकल्प के कारण इस वृक्ष का कल्प वृक्ष नाम पड़ा। कल्प इसमें जो आत्माएं आई हैं, जिनको ये शरीर रूपी रथ मिला है, उनको संकल्प तो चलते ही हैं। संकल्प के बिना आत्मा इस शरीर में नहीं है। अगर है भी, कोई कारण से वो कहीं गुम हो गई है, कोमा में चली गई है, तो हो सकता है उसे संकल्प शांत हो जाए। लेकिन संकल्पों पर अटेंशन देने की जरूरत है। हम किस प्रकार का सोच रहे हैं, किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं, बिना काम के ही सोच रहे हैं, बैठे हैं, चल रहा है चिंतन। अगर हमें अपनी जीवन का परिवर्तन करना है तो पहला एक एक गीत की लाइन याद रखना, चिंतन की धारा को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। चिंतन की धारा, क्या सोच रहा हूं मैं, और उस सोच में अपने प्रति, अपने बाबा के यज्ञ के प्रति, बाबा की पढ़ाई के प्रति, बाबा की विश्व कल्याण के कार्य के प्रति, मेरे अंदर कौन से ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की रचना हो रही है। अगर कोई भी ब्राह्मण आत्मा आलस्य और अलबेलेपन से बचना चाहती है तो सबसे अच्छी विधि है श्रेष्ठ सकारात्मक चिंतन करने की कला सीख जाए। अगर हम अपने आप को कुछ नवीनता देते हैं, एक जैसा चिंतन नहीं चाहिए, कई लोग क्लास भी एक जैसा कराते हैं, टेप जैसे चल जाती है, शुरू करेंगे जहां से शुरू करेंगे स्टॉप करेंगे, अगर आप रिपीट करके या कोई कैसेट बजा करके उनकी देख लो, जिस समय वो पॉइंट उन्होंने कल कही होगी, एक मास पहले कही होगी, वही पॉइंट उसी समय निकलेगी। ये रिपीटेशन क्यों, क्या चिंतन नहीं है? अगर अच्छा चिंतन है, कुछ नवीन चिंतन है, तो आप समझना उल्लास में उमंग उत्साह में रहने का साधन है नया नया चिंतन, नए नए ढंग से योग करो। रोज बैठ गए, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, रोज वही चिंतन करते करते बोर हो जाते, अभी क्या सोचना है, यही सोचना है क्या, यही योग है क्या? जबकि बाबा ने इतना योग की गहराई बताई। एक बार मैंने योग की अव्यक्त मूल्यों से पॉइंट्स निकालना शुरू कर दी, मैंने 12 मास का होमवर्क निकाल दिया, 365 से ज्यादा नवीन बातें निकाली। देखो कितनी बाबा ने दिया है ज्ञान, योग को कितनी वैरायटी से स्पष्ट किया है, कभी अशरीरी स्थिति, कभी विदेही स्थिति, कभी निराकारी स्थिति, कभी आत्मानी स्थिति, कभी फरिश्ता स्थिति, कभी अव्यक्त स्थिति, कितनी वैरायटी ढंग से बाबा ने योग को स्पष्ट किया है। और हम एक ही धुन लगा के योग में बैठ जाते हैं, 5 मिनट बैठते चिंतन करते, फिर सोचते अब क्या सोचे, शांत होकर के बैठ जाते और शांति धाम में सीधा ऐसे चले जाते, लटक जाते। ऐसा योग होता है क्या? अरे वो रस लो, वो आनंद लो। इसलिए कैसे करना है योग, कम से कम एक स्थिति में 10 मिनट तो बैठो। कमेंट्री चाहिए, ये चाहिए, गीत चाहिए, इसके क्यों आधार बना के रखे हैं? एक स्थिति में 10 मिनट, चलो हम फरिश्ता स्थिति में 10 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट हम निराकार स्थिति में बैठते हैं, 10 मिनट एकदम बाबा के साथ कंबाइंड होकर के साकारी स्थिति में बैठते हैं, 45 मिनट कैसे निकल जाएंगे, 10-10, 15-15 मिनट अभ्यास करते करते पता ही नहीं चलेगा। ऐसे नहीं सोचेंगे कब सफेद लाइट होगी, कब तक योग चलेगा, कहीं आते ना ऐसे बैठ के देखते रहते हैं, पता नहीं क्या चलता है, नवीनता नहीं है, वैरायटी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, बस जैसे एक नाम बाबा देता है, लकीर के फकीर, लकीर पकड़ लिया उसी पर चल रहे हैं बस। कुछ अपना चिंतन, अपने अच्छे अच्छे बाबा की बातें हैं, और कुछ नया थोड़ी चिंतन करना, मनमत वाला थोड़ी करना, श्रीमत में मनमत नहीं मिक्स करना। लेकिन बाबा ने जो इतनी नवीनता से हम सबको ज्ञान दिया है, समझाया है, वैरायटी बताई है, अभी आत्मा के 7 गुण हैं। रोज शांत स्वरूप होके क्यों बैठते हो, कभी ज्ञान स्वरूप होके बैठो, कभी प्रेम स्वरूप होके बैठो, कभी आनंद स्वरूप होके बैठो, कभी सुख स्वरूप होके बैठो, कभी पवित्र स्वरूप, उसी स्वरूप में उस सागर की किरणें आ रही हैं, उस परमात्मा की किरणें ले रहे हैं, वही जा रही हैं, तो 7 दिन तो ऐसे निकल जाएगा। अगर कोई वैरायटी और नवीनता करेगा तो उसका उल्लास, उसका उमंग, उत्साह सदा बढ़ा रहेगा, कायम रहेगा। और हमारी दादी जी थी ना, जानकी दादी और दादी प्रकाशमणि, दोनों को मैंने देखा, उनके अंदर वो नवीनता, वो उमंग उत्साह रहता था जो कुछ न कुछ नया करना है, कुछ न कुछ नया करना है। रोज सवेरे अगर मैं मुरली के बाद दादी जी के पास न गया, कहाँ गया, किधर गया आज, सवेरे सवेरे मुरली पूरी होते ही मुझे अपने पास बुलाती, आज मुझे अमृत वेले बाबा ने ये कहा, आज मुझे ये कहा, आज मुझे ये कहा। तो मैं कभी कभी हंसते बोलता था, बाबा ट्रांस में जाती हूँ क्या दादी? नहीं नहीं, ट्रांस में नहीं जाती हूँ, लेकिन बाबा मुझे कह के चला जाता है, मुझे बोल के चला जाता है। इतना बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, जो बाबा के कमरे में अगर चली गई तो नए बाहर आके कुछ न कुछ संदेश सुनाएगी, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा। और कहा माना करके दिखाना है, वो कहा है करना है, कैसे करना उसकी प्लानिंग करो, उसके लिए मीटिंग करो, लेकिन ये बाबा ने कहा है। एक दिन आई बाबा के कमरे से, कहती है बाबा ने कहा है बच्ची, सब सब जगह पर 1-1 लाख का प्रोग्राम करना है, 1-1 लाख लोगों का संगठन करना है। पहला पहला मैं गया था, मेरे को सुना दिया, मैं दादी हमारे प्रोग्राम में 1 लाख लोग कैसे आएंगे, ये 2003 की बात है, हमारे प्रोग्राम में 1 लाख कैसे आएंगे, हमारे यहाँ तो 5,000 आ जाएं, 3,000, 2,000 आ जाएं सभा में, बहुत बड़ी बात है। कहती क्या है, बाबा मुझे कह रहा है, तुम सोच विचार करना चाहिए। तो मैं तो कुछ कट नहीं करता था, दादी कह रही है, हाँ दादी ठीक है। तो उन्होंने अपने मीटिंग में बड़ों के बीच में भी रख दिया ये बात कि आज मुझे बाबा ने ये कहा। तो सब वही समझाने लगे, दादी ऐसा कैसे होगा, हमारी सभा में 1 लाख कैसे आएंगे। और दादी को बाबा बार बार जैसे कह रहा, बच्ची 1 लाख की सभा को, 1 लाख की सभा को, उमंग उत्साह था, नया उमंग था। तो सहला दीदी अहमदाबाद वाली कहती है, दादी आपको अगर बाबा कह रहा है तो मैं करूंगी, मैं पहले करूंगी। अब दादी को नशा चढ़ गया, एक बच्ची तो तैयार हो गई, कहती अच्छा ठीक है सहला तुम करो, जो मदद चाहिए दादी देगी तुमको। और उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया जो पहली सभा में 2 लाख से भी अधिक लोग आए, कोई बाहर का नहीं था, ऐसे नहीं कोई एक्ट्रेस को खड़ा कर दिया, कोई ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को, केवल तीनों दादियां मंच पर थी, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, तीनों दादियों ने भाषण किया और कोई चौथा व्यक्ति नहीं था। और दादी ने उस सभा को देख करके बस इतना उनको आया कि बाबा ने जो मुझे कहा करना है, और फिर निकाला डायरेक्शन, रोज नया, इस शहर में होना चाहिए, इस शहर में होना चाहिए, इस शहर में होना चाहिए। लास्ट में दो बहनों के लिए कहती नहीं दादी मेरे से नहीं होगा, बहुत खर्चा होगा, ये होगा वो होगा। दादी मेरे को बुला के कहती इधर बैठ मेरे साथ, उस दादी को तुम फोन कर, ठीक है, उमंग उत्साह देखो कितना उमंग उत्साह। जब मैंने बोला कि दादी जी आपको कह रही हैं कि यहाँ पर 1 मेगा प्रोग्राम होना चाहिए, दादी आपको करना है, दादी का बहुत उमंग है आपके लिए, अरे दादी तो बोलती है, दादी को क्या पता है, वो दादी मेरे साथ बैठी सुन रही है। दादी ने फोन हाथ में लिया, ए क्या सोचती है, बैंक में इतना रखा है क्या करेगी, शरीर छूट जाएगा फिर क्या सफल हो जाएगा। अरे इतना दादी ने उसको प्यार से महिमा करके, अरे तुम क्या नहीं कर सकती, करना ही है, और तुम नहीं करेगी वो दादी करेगी आकर के। ये उमंग उत्साह था। और सचमुच 1-1.5 लाख के प्रोग्राम मैं समझता हूं कोई भी बड़ी सिटी नहीं छूटी होगी, उस समय पूरे ही भारत के कोने कोने में हुआ। और लास्ट में क्या कहती है, एक दिन बुलाया मधुबन वालों को कि पूरे भारत ने किया है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहां कम से कम 50,000 को तो बुलाओ, ये सब आबू के आजू बाजू के जितने हैं उन सबको निमंत्रण दो, सबको आना चाहिए। दादी को हंसते सब, हम कहें दादी यहां तो सब भील ग्रासिया रहते हैं, कौन आएगा और 50,000 कहां से लाएंगे? मैं नहीं जानती, कुछ भी करो तुम लोग, सबको निमंत्रण दो मेरे नाम से। बोलो दादी तुमको बुलाती है, दादी तुमको सौगात देगी, दादी ब्रह्मा भोजन कराएगी। ये था उनका उमंग उत्साह। और सचमुच जब चारों तरफ बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, तो 40-45 हजार लोग यहां आ गए इसी शांतिवन में यहां। और दादी को क्या उमंग, क्या उत्साह, क्या आपको बताऊं। दादी बस बैठ गई, मुझे सबको अपने हाथ से सौगात देनी है। दादी भील गिलास आप नहीं देंगी, दिलवा देते हैं, बांट देते। बैठी रही एकदम, मैं टोली दूंगी इनको, प्रसाद दूंगी इनको, सौगात दूंगी। ये था उमंग उत्साह, कहां सुस्ती थी, कहां आलस्य था। एक दिन की रमणीक बात दादी की सुनाता हूं। एक दिन क्लास में आई मोहिनी बहन और दादी, तो दादी ने क्लास में ऐसे पूछ दिया, इस सभा में बुढ़े कितने बैठे हैं, बुजुर्ग कितने बैठे हैं? तो कोई कोई खड़े हो गए। तो दादी ने कहा नहीं, 60 साल के ऊपर जितने बैठे हैं सब खड़े हो जाओ, 60 साल के ऊपर आयु के। तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, 60 साल के तो बहुत होते हैं। कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठाओ थोड़ा देखें, 60 साल से ऊपर वाले। यहां भी देखो अभी बहुत सारे बैठे हैं, आधे से ज्यादा सब आए। तो दादी ने सबको बोला, अरे अच्छा ये सब बुढ़े आए हैं, बुजुर्ग आए हैं। तो मोहिनी बहन कहती है, दादी आप भी तो बुढ़ी हैं ना, आप भी खड़ी हो जाओ, क्योंकि दादी की आयु भी 70 के ऊपर थी उस समय। तो दादी, मैं बुढ़ी हूं? किसने कहा मैं बुढ़ी हूं? मैं बुढ़ी थोड़ी हूं, मैं जवान हूं। बूढ़े वो हैं जिनके अंदर उमंग उत्साह नहीं है, जिनके अंदर नशा और खुशी नहीं है। मैं बूढ़ी थोड़ी हूं। अरे इतना नशा, इतना लोगों ने ताली बजाई, दादी सदा यंग, सदा जवान रही, कभी बूढ़े अपने को समझा ही नहीं। जो बूढ़े होते हो तो बिस्तर में सोए रहते हैं, उनको उमंग उत्साह ही नहीं रहता। लेकिन बाबा ने कहा, कभी भी मेरे बच्चे ये ना समझे मैं रिटायर हो गया, वानप्रस्थी हो गया, नहीं तो वानप्रस्थी तो बिस्तर पकड़ लेता। आप सब सदा ही जवान हैं, क्योंकि बाबा के तो बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना। अरे बच्चे बन जाओ, माया से बच जाओगे, नहीं तो माया कहीं ना कहीं सुस्त बना देगी, अलबेला बना देगी। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को रोज नया नया युद्ध, नया नया चिंतन, नया नया उमंग उत्साह, नवीनता बहुत जरूरी है इस ब्राह्मण जीवन में। अगर किसी को सदा खुश रहना है, सदा उत्साह में रहना है, तो रोज नए ढंग का पुरुषार्थ करना, एक जैसा नहीं करना, एक जैसा चिंतन नहीं, एक जैसी बात नहीं, मुरली के सुनाने का तरीका भी नए नए ढंग से इमर्ज करो। आज बाबा ने इस ढंग से ये बात इतनी अच्छी कही है, उसकी गहराई में जाओ, उसका चिंतन करो, तो जहां नवीनता आ गई क्लास भी उमंग उत्साह में आ जाएगा। नहीं तो बेचारे आते हैं मुरली सुन के चले जाते हैं, लगता कुछ मिला ही नहीं, वही मुरली तो थी। लेकिन दादियों ने उसको इतनी नवीनता से पढ़ाई किया, इतना अच्छी तरह से स्टडी किया। कई बार दादी जान की 5-6 बार मुरली पढ़ती थी, बड़े अक्षर की बना के देते थे कॉपी, जब जाओ तो दादी के हाथ में मुरली है। एक दिन अचानक मेरे को बुला के कहती, इधर आओ, तूने ये पॉइंट कहां से लिखी है, ये पॉइंट आज तक मुरली में नहीं आई, नहीं है, नहीं है, ऐसे बोलती है। तो मैं हंसने लगा, दादी नहीं नहीं है, नहीं मैं कहां से लाऊंगा, ये तो रिपीट हो रही मुरली। बोली इतने दिन मैंने पढ़ी है, अभी तक मेरी ध्यान पर ये क्यों नहीं आई? नहीं तुम कहीं से तो लाया होगा, मैं कहीं से नहीं लाया हूं, ये बाबा की मुरली है दादी, 5 साल पहले भी आपने सुनी है। इतनी गहराई से, इतना चिंतन श्रेष्ठ करके उसको पढ़ने से उनको नवीनता लगी। ये नई बात बाबा ने कही, ये नई बात कही है। तो मुरली वही है, लेकिन उसकी स्टडी का, उनका बुद्धि की स्वच्छता का, उनकी स्पष्टता का जो चिंतन है, उससे उसमें उन्होंने नवीनता अनुभव की। तो हम सब अगर बाबा की मुरली को नवीनता से पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाई से हमारी बुद्धि विशाल बनती है, तीव्र बनती है, और कहां सुस्ती है, कहां आलस्य है। तीसरी एक बात याद आती है कि जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है और चारों तरफ से उस पर कोई घेराव होने की आशा रहती है, कहीं से भी वार हो सकता है, अटैक हो सकता है। युद्ध के मैदान में खड़ा है तो युद्ध योद्धा कभी सुस्ती करेगा? कहीं से भी वार हो सकता है, किधर से भी वार हो सकता है। माया तो देख ही रही है कहां ये थोड़ा सा इधर उधर करे और इसको मैं मारूं चमाट। तो आप सभी ध्यान देना, बहुत इस समय अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट रहो, एक्यूरेट रहो, कल पर कोई भी कार्य नहीं छोड़ना, जो करना है आज कर लेना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए जो शुभ संकल्प आए, जो श्रेष्ठ संकल्प आए, अगर आपने कह दिया कर लेंगे, समय पड़ा है, तो बीच में जो मार्जिन है उसमें माया घुस जाएगी, करने नहीं देगी। इसलिए क्यों मार्जिन छोड़ते हो? शुभ संकल्प आया है, बाबा ने अगर कुछ शक्ति दी है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, कोई विशेषता की शक्ति है, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी समय पड़ा है, तो उसके बीच में अगर ये संकल्प आ गया, यही सुस्ती है, यही अलबेलापन है। इसलिए संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प आया है, कल पर सोचना नहीं है, कर लेना है, पूछने की जरूरत नहीं किसी से। जो अच्छा संकल्प है, पुण्य का संकल्प है, सफल करने का संकल्प है, उसको डिले नहीं करो, डिले इज डेंजर, तुरंत कर लो, भाग्य बन जाएगा। बीच में अगर आपने समय गैप कर दिया तो कहीं ना कहीं माया का वार हो जाए। और कोई नेगेटिव संकल्प आता है, विकारी संकल्प आता है, कोई क्रोध का संकल्प आ जाता है, वेट एंड सी, थोड़ा ठहरो, उस समय तुरंत नहीं करना, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, वो ठीक हो जाएगा, अपने आप माया भाग जाएगी। तो ये सब विधियां, युक्तियां बाबा ने हम बच्चों को बताई हैं। लेकिन गलत संकल्प आ गया, कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मैं तो सहन नहीं कर सकता, ये झूठ बोलता है, और झूठ वो बोलता है, गुस्सा हमको आता है। गलत कौन है, झूठ बोलने वाला या गुस्सा करने वाला? उसने झूठ बोला और हम कह रहे हमको सहन नहीं होता है, क्यों झूठ बोलता है? बाबा कहता सबसे बड़ा बोझ तेरे पर चढ़ रहा है जो तुम गुस्सा कर रहा है। गुस्सा करने वाले झूठ को कैसे बदल सकते हैं? और अगर तुम सत्य हो तो सत्यता की निशानी क्या है? सभ्यता है, सिद्ध और जिद नहीं करते। इसलिए बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान अपने बच्चों को दिया है, अगर कोई ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो कभी भी अपने जीवन में उदासी, निराशा, थकावट अनुभव नहीं करती, उसके अंदर नए नए विचार, उमंग उत्साह के विचार चलते हैं और माया को सहज जीत लेती है। कई प्रकार के बड़ों ने हमें सिखाया ऐसे करके, इतना उमंग, इतना उत्साह रहा। एक बार की और रमणीक बात सुनाता हूं कि दादी जी का उमंग उत्साह ने, आज दादी प्रकाशमणि जी के उमंग उत्साह ने ओम शांति भवन निर्माण करा दिया। पैसा न होते हुए भी, किसी से मांगा नहीं, चलो चलो आज पहाड़ उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, वहीं पर चाय पिलाएंगे, वहीं टोली खिलाएंगे, कोई को क्लास नहीं करने दिया, सिर्फ मुरली क्लास होता था। कोई भी पार्टी आए, कोई भी सेवाधारी आए, सब पत्थर उठाएंगे, और दादी खुद खड़ी है, तगारी उठा रही है, साथ में लग जाते थे हम सब। ओम शांति भवन बनवा दिया, इतने उमंग उत्साह में थी, डेट पहले से बता दिया, मकान खड़ा ही नहीं है, 8 फरवरी 1983 को उद्घाटन होना है, मैं डेट सहित बताता हूं आपको, और 82 दिसंबर में ओम शांति भवन की दीवार भी नहीं थी, एक उस पर कैंची लगेगी, उसकी फॉर सीलिंग होगी, उसमें लाइटिंग होगी, उसका सारा फर्श बनेगी, साउंड लाइट सेट होगा, कुछ नहीं है, केवल 2-2.5 मास का समय है, और उद्घाटन की डेट 8 फरवरी है, और यूनाइटेड नेशन से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल उद्घाटन करने आ रहा है। मधुबन वालों को नींद नहीं करनी है, सबके सब खड़े हो जाओ, कोई कैंची पर चढ़ो, रंग लगाओ, कोई ये करो, कोई ये करो, कोई ये करो, न दादी सोए न लोगों को सोने दे, इतना उमंग उत्साह, कहां सुस्ती आएगी, कहां आलस्य आएगा। और सचमुच वो 8 फरवरी को विधिवत उद्घाटन हुआ अच्छे से अच्छे हाल बन करके। आज इतने साल पहले वो बना है, अभी भी उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है, वही मुजैल टाइल अभी लगाई हुई है। ओम शांति वनवर, ज्ञान सरोवर जंगल, और उस ज्ञान सरोवर का निर्माण कैसे हुआ उसका तो विचित्र कहानी है, मैं वो नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उसका बाद जब वो हाल बाबा उद्घाटन करने आए तो देखा है तो हाल छोटा है, बाबा एक ही बार ज्ञान सरोवर में आए, आकर के बाहर गए तो जितने अंदर बैठे थे उससे ज्यादा बाहर खड़े हुए थे, झंडा लहराया बाहर आके, बस बाबा आते ही कहते क्या बनाया। बाबा का तो लक्ष्य था 5-10 हजार का हाल बन जाएगा तो सीजन हो जाएगा। बस वहां से बस बाबा ने टच करना शुरू किया, इस जमीन शांतिवन की तैयार होने लगी, ये 20 हजार का हाल बनवा दिया बाबा ने। और खड़े होके दादी कहे ये डेट पर बनेगा, हो जाएगा, कोई से मांगना नहीं। लेकिन एक उमंग उत्साह, ऐसी शक्ति थी, ऐसी चीज थी जो हर कार्य खुद करना और कराना सबसे, हम कोई को कह करके कुछ नहीं करा सकते, ध्यान देना। दादियों ने कभी हमसे कह करके नहीं कराया, पहले किया फिर कहा करो, जैसे मैं कर रही हूं ऐसे तुम भी करो। कोई भी चीज सिखानी है तो हम सबको केवल बोल करके नहीं, कह करके नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करने से हम करेंगे तो हमें देख सब कर लेंगे, और जो कुछ हम करेंगे वही दूसरे फॉलो करेंगे। ये बहुत अच्छा पाठ हमारी दादी के अंदर था, उमंग उत्साह तो इतना भरपूर था। एक बार शुरू शुरू में पांडव भवन में कोयले पर खाना बनता था, कोयला ही था, लकड़ी और कोयला, गैस और ये सिस्टम नहीं था कुछ भी। तो एक हमारे भाई जी, ये भाई थे, रेलवे से रिटायर हुए थे, बुजुर्ग थे, उनका नाम था खन्ना जी, अंबाला के थे, खन्ना जी और दादा गुरमुख, दो बुजुर्ग भाई, और कोयले की ट्रेन चलाते थे। वो कोयले वाली ट्रेनें चलती थी पहले जमाने में। तो रिटायर होकर के बाबा के घर में आए, कहते हम अभी सरेंडर होंगे, सेवा करेंगे यज्ञ की। क्या सेवा करेंगे? कोयले का सब हम काम करेंगे, कोयले पर ही कोयले के लड्डू बनाते थे, कोयला ही जलाते थे, कोयले की सिगरिया जलती थी। तो वो जा करके धनबाद से, झारखंड से, अभी झारखंड उस समय बिहार, तो एक पूरी ट्रेन कोयले की लेकर के आ गए, पूरी ट्रेन फुल बोगियां सब कोयले की ट्रेन की आ गई, और यहां अबू रोड में स्टेशन पर खड़ी हो गई। और वो होली के दिन थे, जैसे दिवाली पर मजदूर जाते हैं तो 15 दिन तक नहीं आते, ऐसे होली के दिन थे, और होली पर भी मजदूर सब चले गए गांव में, घरों में। और यहां से स्टेशन से रोज नोटिस आने लगी, आप अगर कल तक नहीं खाली करेंगे तो इतनी पेनल्टी लगेगी, ये होगा ये होगा। और दादी तो क्या उमंग उत्साह रहता था, पेनल्टी लगेगी, क्यों पेनल्टी देंगे। तो आ गई क्लास में मुरली सुनाने, अब मुरली सुनाते सुनाते और बस दादी ने महावीर हनुमान की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मुरली के पहले ही कहती है, ये एक पवन पूत था, बाल ब्रह्मचारी हनुमान, अरे लंका में लक्ष्मण को कोई तीर लग गया, उनको बचाने के लिए वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए, अगर एक रात में ही आ जाएगी तो ये लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, कौन लाएगा वो बूटी। अब कहानी बड़े प्यार से सुना रही थी, पता नहीं क्यों सुना रही। तो सबने, जामवंत ने हनुमान जी को खड़ा कर दिया, भाई तुम ही ला सकता है, उड़ने वाला है तुम। तो हनुमान जी वहां से उड़े, हिमालय पहुंच गए, कहां लंका और कहां हिमालय, संजीवनी बूटी लेने के लिए। और जब वहां गए तो रावण को पता चल गया कि कोई यहां से संजीवनी बूटी न ले जाए, तो उसने जितनी बूटियां थी सब एक जैसी कर दिया, ये हनुमान पहचान ही न सके कौन सी संजीवनी बूटी है। वो देखता रहा है कौन सी, पहचान बताई गई थी वैद्य ने, जो बताया था वो सब बूटियां एक जैसी। वो सोचता रहा सोचता रहा, उसने पहाड़ को ही नीचे से उठा लिया, जो होगी वैद्य ले लेगा। पूरा पहाड़ उठा करके लंका, वहां हिमालय से उड़ा और लंका में रातों रात पहुंच गया। क्या शक्ति थी एक ब्रह्मचारी, और हमारे पास तो इतने बाल ब्रह्मचारी पवन पुत बैठे हैं। बस उमंग उत्साह दिलाया और उसी ढंग से बात किया और कहा एक छोटी सी ट्रेन में कोयला आया है, क्या बड़ी बात है। अरे इतने पवन पुत जाएंगे 5 मिनट में खाली कर देंगे ट्रेन, चलो सब चलो। मुरली पूरी किया और फटाफट एक ही ट्रक था, भेज दिया सबको। रातों रात वो मना दिन ही था, आए सभी पूरी ट्रेन को खाली कर लिया, खाली करके कोयला भर भर करके पूरा पांडव भवन पहुंचा दिया। यहां घर नहीं था, शांतिवन कुछ नहीं था। एक ही दिन रात तक सब की शक्ल काली, कपड़े काले, पहचान में नहीं आए हैं कौन ये लोग। तो दादी देखी, अरे ये मेरे भाई, इनको ऐसा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। तो दादी कहती, अच्छा अच्छा तुम लोग लो साबुन लो, अभी अभी जाओ सब तैयार होकर के, कपड़ा चेंज करके नहा धो करके आओ, आपके साथ पिकनिक करेंगे, स्पेशल पिकनिक, और बाबा के साथ पिकनिक कराएंगे आप। क्या दादी का उमंग था। सब गए नहा धो करके, तैयार होकर के बाबा के सामने आए। बाबा आ गए सभा में और बाबा ने क्या प्यार किया, क्या बातें किया होगा, उसकी तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि दादियों के उमंग उत्साह से आज यज्ञ कहां से कहां पहुंचा है। उन्होंने कभी आलस्य के बस अलबेले पर हो जाएगा कर लेंगे, कभी भी गे गे की भाषा यूज नहीं की। बाबा कहते हैं तो बच्चों की भाषा है, गे गे क्यों करते हो। इसलिए शुभ संकल्प जो आते हैं, श्रेष्ठ संकल्प जो आते हैं, स्थापना का जो इतना बड़ा कार्य है जो बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है, हम सब बड़े उमंग उत्साह में रहें। उमंग उत्साह है तो माया कहीं से भी नहीं आ सकती, पहले वो सुस्त बनाती है, फिर वो काम रूप में, देहमान के रूप में, अहंकार के रूप में अटैक करती है। सभी विकारों का जन्म इस आलस्य और अलबेलेपन से हो जाता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे विजयी हैं, योद्धे हैं, महावीर हैं, जो भी कहें। अगर उसी नशे और सामान में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, ये माया अपने आप भाग जाएगी, विजयी बन जाएंगे। तो कभी भी कोई भी प्रकार से आलस्य और अलबेलेपन को आने नहीं देना। नहीं तो बाबा ने एक दिन 5-6 दिन पहले एक वरदान में कहा कि कई बच्चे अपनी कमजोरियों को पिल्लर लगा करके उसको और मजबूत कर लेते हैं। कौन से पिल्लर लगा लेते हैं, कौन अभी बना है, समय पड़ा है, कहते तो सब हैं, होने वाला तो वही है जो ड्रामा में है। ऐसे ऐसे कमजोर संकल्प लेकर के पिल्लर लगा करके अपनी कमजोरियों को और मजबूत बना देते हैं। इसलिए हम सबको विजयी बनना है ना। सभी भाई बहने क्या समझते हो, बाबा ने अपने बच्चों को विजयी भव का वरदान दिया है। रोज अमृत वेले बाबा अपने बच्चों के मस्तक पर कौन सा तिलक लगाता है, विजयी भव। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कितना भी विकराल रूप हो, कितना भी कड़े से कड़ा पेपर हो, क्योंकि पेपर तो आएंगे ना, पढ़ाई है तो पेपर है, पढ़ाई नहीं हो तो पेपर नहीं होगा। हम अगर पढ़ रहे हैं तो पेपर से डरना नहीं, कभी शरीर का आएगा, कभी संस्कारों का आएगा, कभी संगठन का आएगा, कभी माया के भिन्न भिन्न रूपों का आएगा, कभी आर्थिक आएगा, कभी सामाजिक आएगा, कभी प्राकृतिक आएगा, कभी पारिवारिक, कोई भी पेपर आए। बाबा ने कहा मुझे साथी बनाओ, मैं 1000 भुजाओं वाला तुम्हारे साथ हूं, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए कभी भी निराश, उदास, हताश नहीं होना। उदासी आई, निराश आई, माया ने थप्पड़ लगा दिया। सदा उमंग उत्साह में रहता है, वो कहता कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, हमने कल्प कल्प विजय पाई है और विजयी बन करके दिखाएंगे, ये है हमारा निश्चय। ठीक है, तो इस निश्चय का रोज तिलक लगाना ऐसे मस्तक पर। बाबा कई बार कहते ना 3 बिंदियों का तिलक लगा लो, एक आत्मा बिंदी, एक बाबा बिंदी, और एक ड्रामा में जो कुछ सीन बीत गई वो बिंदी। ये बिंदियों का तिलक लगाते लगाते ये तिलक लगाओ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया कितना भी बड़े रूप में आ जाए, असुरासुर क्या कहते थे, इतना बड़ा मुंह खोल करके आ जाए तो भी कभी कोई बात हो ना, बड़े रूप को छोटा बना करके निकल जाओ। छोटी छोटी बातों को सोच सोच के कहीं बहुत बड़ा बना देते, वही पहाड़ बन जाता। महारथी महावीर वो है जो बड़े से बड़ी बात आए कुछ नहीं है, पार हो जाएंगे। दादियों ने ऐसे यज्ञ को आगे बढ़ाया, कोई भी बात को ये नहीं कहा बहुत बड़ी बात आ गई, आई है ठीक हो जाएगी, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बस यही एक निश्चय ने सब पेपर्स को क्रॉस करके आज यहां से यहां तक, कहां से कहां तक यज्ञ को पहुंचाया है। हम कहां पहुंच गए अभी तो बस बाबा कहता ना सड पंथ पर पहुंच गए, एकदम इधर से उधर पांव रखो नई दुनिया आ जाएगी, ऐसे समय पर हम पहुंचे हैं। इसलिए अभी अंतिम समय में ऐसे नहीं है, कई बार अंतिम समय जब आता है ना तो फिर से माया वार कर देती, तो लास्ट वार बड़ा तेज लगाती है, उससे बच के रहना और विजयी बन के दिखाना। के ओम शांति।
अपने चिंतन की धारा बदल दो।